ओम शांति, ओम शांति। तो अभी ये सेशन जो है मुरली रिवीजन का सेशन है। तो जो पीछे बैठे हैं, बिल्कुल अभी पीछे बैठने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको केवल सुनना नहीं है, मुरली रिवीजन तो दोनों तरफ से होता है ना, आपको भी सुनाना है आपने क्या आज मुरली में सुना, वो सुनाएंगे तो सही। तो सभी आगे आकर के बैठेंगे और हाँ ठीक है। ओम शांति। तो सभी ने आज की मुरली सुनी, मुरली सुनी सभी ने, हाँ सुनने का मतलब समझा था ना कल, ठीक है वो तो आपने समझ लिया है कि सुनने का मतलब है करना। तो आज बाबा ने विशेष जो हाईलाइट की वो ये था कि तन मन की थकावट मिटाने के लिए क्या चाहिए, शक्तिशाली याद, ठीक है ना। तो बाबा ने कहा शक्तिशाली याद है तो शरीर की भी थकावट खत्म हो जाएगी, दिमाग की थकावट भी खत्म हो जाएगी, स्थिति की थकावट भी खत्म थकावट खत्म हो जाएगी। तो अभी हम पांच मिनट में समझता हूं ज्यादा हो जाएगा, एक दो मिनट है, दो मिनट देते हैं। आप सोचो, वैसे तो बाबा ने एक बात बता दी कि सारे दिन में हर घंटे में कितने मिनट, एक दो मिनट शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करो। तो ये क्या काम करेगा, एक दो मिनट भी हम शक्तिशाली याद का अनुभव करेंगे तो तो बाबा ने कहा तन मन की थकावट तो मिटेगी ही, लेकिन इस याद में क्या आ जाएगा, विटामिन ए बी सी सारे विटामिन आ जाएंगे। तो अभी दो मिनट आपको चिंतन करना है कि शक्तिशाली याद क्या है, कैसे हमारी शक्तिशाली याद होगी। और जब आपने कहा याद का लिंक जुटा रहे, तो लिंक जुटा रहे क्या करेंगे, तो लिंक जुटा रहेगा, कौन सी बात हमारे लिंक को तोड़ देती है। हम सब चाहते हैं कि हम सारा दिन बाबा की याद में रहें, बाबा की छत्र छाया का अनुभव होता रहे, बाबा से हम कंबाइंड रहें, लेकिन कौन सी बात है जो वो लिंक तोड़ देती है, और हम क्या करें जिससे हमें सारा दिन हमारा वो लिंक जुटा रहे। दो मिनट समय आप चिंतन करो इसके ऊपर। ओम शांति। आया कुछ आंसर, तो आप बताएंगे या मुरली रिवीजन करें, अभी आंसर कुछ बताएंगे। अच्छा चलो, जब ये पॉइंट आएगा तब फिर पूछेंगे, हम स्टार्ट करते हैं। बाबा ने कहा, आज बाबा ने कहा परदेसी बाप, बाबा ने अपने आप को परदेसी बताया, हाँ परदेसी बाप किन बच्चों से मिलने आए हैं, अनादि देशवासी और आदि देशवासी। अनादि देश आपका कौन सा, परम धाम। परम धाम जो आत्माओं का घर है वो हमारा अनादि देश है, वही हमारा। और ये क्या है जहां पर हम हैं, क्या है, वहां हम घर से आए हैं, यहां ये कर्म क्षेत्र है, सृष्टि रूपी रंगमंच पर शरीर धारण करके पार्ट बजा रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, लेकिन घर वो है परम धाम। तो वहां से आए आपको कितने वर्ष हो गए? 5000 वर्ष, याद आ गया? ठीक है, 5000 वर्ष। तो अब यही रहना है या वापस जाना है? जाना है। तो एक होते हैं जो साथ जाएंगे, हाँ? बाबा कई बार कहते ना, एक होते हैं साथ जाने वाले और एक है पीछे पीछे आने वाले। तो आप क्या हैं? साथ जाने वाले। अच्छा अच्छा, तो साथ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे वो है वैसे हमें भी। अच्छा, जैसे आपका, आप हैं कहीं मार्केट जा रहे हैं या और कहीं जा रहे हैं, आपका बच्चा तैयार हो, तो आप क्या बोलेंगे? पहले स्नान पानी करके आओ, ड्रेस चेंज करो, फिर लेकर चलेंगे, ऐसे नहीं है? तो ऐसे बाबा कहता है पहले प्योर बनो। तो जाना है, आप सोचो हमें परम धाम जाना, वो भी भगवान के साथ, भगवान हमारा पिता है, उसके साथ हमें जाना है, तो हमें क्या तैयारी करनी है? जैसे अभी आप मधुबन से 2 दिन के बाद घर जाएंगे, तो कुछ सोचेंगे ना, कुछ तैयारी करेंगे ही नहीं करेंगे? हाँ भाई, लिटरेचर लेंगे, टिकट बनवाएंगे, टोली लेंगे, है ना, इंतजाम करेंगे ना। अब ये अपने घर जाने की, तो यहाँ घर, ये वाला घर मतलब कोल्हापुर आपको जाना है तो ये तैयारी आप करेंगे। अब वैसे परम धाम जाना है, तो परम धाम जाना है तो क्या तैयारी करेंगे? अब देखो, जहां जाना होता है, जैसा देश होता है वैसा वेश बनाना पड़ता है। अगर अभी आपको कहा जाए आपको शिमला जाना है, तो आप गर्म कपड़े इकट्ठा करेंगे ना, भाई ठंडा वहां पड़ता है, हा? और साउथ की तरफ जाना होगा तो वहां के उस प्रकार नॉर्मल कपड़े लेंगे। तो परम धाम निराकारी दुनिया है, तो वहां जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने निराकारी स्वरूप में स्वयं को स्थित करना पड़ेगा ना। अच्छा, और वो पावन धाम है, तो अपने आप को क्या बनाना पड़ेगा? पावन। और बाबा ने कहा मैं आया हूं सभी को ले जान, है ना, जाना तो सभी को पड़ेगा, है? एक है जो यहां योग करके स्वयं को पावन बनाया, तो वो कैसे जाएंगे? हाँ, वो बाबा के साथ में जाएंगे और फिर वापस राज्य, है ना, सत्यगी दुनिया में आकर राज्य करेंगे, ऊंच पद पाएंगे। और एक है जो पावन नहीं बनेंगे, चलो पावन नहीं बनने वालों की तो बात ही छोड़ो, जिनके अंदर कुछ इम्प्योरिटी रह गई, तो क्या होगा? धर्मराजपुरी में सजा। जाना तो उनको भी है सजा, और फिर सतयुग में आएंगे तो पद से भी कम। देखो, 2 बच्चे होते ना माँ बाप के, एक बच्चा होता है पढ़ने लिखने में होशियार होता है, वो प्यार से स्कूल जाता है, और दूसरा नटखट होता है, तो माँ बाप छोड़ते थोड़ी हैं, उसको भी 2 थप्पड़ लगाएंगे, चल स्कूल क्यों नहीं जाएगा उसको भी स्कूल जाना पड़ता है, लेकिन वो 2 थप्पड़ खा के जाता है। लेकिन जो जिसकी पढ़ने में रुचि रहती है वो क्या करता है, वो अच्छे से पढ़ाई करता है, और फिर पढ़ लिख करके अच्छा कोई उसकी सर्विस लग जाती है। और जो मार खा के गया, क्योंकि वो पढ़ने में कमजोर होता है ना, तो बीच में उसकी पढ़ाई छूट जाती है, फिर सारा जीवन उसका अंधकारमय हो जाता है। तो हम प्यार से पढ़ करके प्यार से जाने वाले, अच्छा घड़ी बड़ी फास्ट जा रही है, अभी मुझे फास्ट मुरली रिविजन करनी है। तो आप खुद चिंतन करो, मुरली ना एक एक पॉइंट लेकर के उसके ऊपर समझने की कोशिश करो, उसको गहराई से चिंतन करो, तो बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, फिर आदिदेश, आदिदेशवासी, उसमें क्या बाबा, क्योंकि बाबा के सामने विदेशी थे ना, तो कोई भी वो मुरली बाबा के सामने, भले कई बार हमेशा होता है हाँ, बाबा की मुरली पहले ऐसा, हाँ, जब बाप दादा आते थे और जब तक बाबा की मुरली चलती थी हम पूरा अटेंशन से सुनते थे। अब कोई पार्टियों की बात आई, विदेशियों की बात आई तो हम, अरे अभी तो बाबा विदेशियों से मिल रहे हैं ना, तो बाबा किसी से भी मिल रहे हों, किसी से भी बातें कर रहे हों, लेकिन वो चीज हम अपने लिए समझें, ये मेरे लिए है। जैसे अभी ये मास चल रहा है, कौन सा मास है, जुलाई मास, और इस मास में हम किसको याद करते हैं, दीदी को। तो दीदी ने एक बार ब्रह्मा बाबा से पूछा, बाबा मम्मा जैसे पुरुषार्थ करती है मैं भी उसी तरह पुरुषार्थ करती हूं। जिन्होंने दीदी को नहीं देखा होगा पीछे फोटो लगा है मम्मा के बाजू में, तो दीदी ने बाबा को कहा, बाबा मम्मा के बाजू में, तो जैसे मम्मा पुरुषार्थ करती है ठीक इसी प्रकार मैं भी पुरुषार्थ करती हूं। मम्मा के अंदर ये लगन है कि बाबा की एक भी श्रीमत का उल्लंघन हमें नहीं करना है, तो मेरे अंदर भी यही लगन रहता है कि मुझे भी एक भी श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। फिर भी मम्मा नंबर वन, मम्मा लक्ष्मी किस आधार से, मम्मा की तरह तो मेरा भी पुरुषार्थ है। तो बाबा मुस्कुराए, बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची, बाबा ये इस प्रश्न का जवाब बाद में बताएंगे। तो एक दिन बाबा के सामने कुछ बच्चे बैठे हुए थे, बाबा उन बच्चों से मिल रहे थे, उन बच्चों को शिक्षाएं दे रहे थे, और फिर बाबा ने उन बच्चों को लास्ट में टोली खिलाई और विदा की। तो जब वो पार्टी चली गई, मन बच्चे चले गए सब, तो बाबा ने दीदी से पूछा, क्योंकि बाबा के बाजू में दीदी भी बैठी थी और मम्मा भी बैठी थी, तो बाबा ने दीदी से पूछा, अच्छा दीदी ये बताओ, जो पार्टी बाबा के सामने बैठी थी, बाबा ने उन बच्चों को क्या क्या कहा? तो दीदी बोली, बाबा आप उनके लिए बोल रहे थे ना, इसलिए मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, बाकी आप मेरे लिए जो कुछ कहते वो तो फिर पत्थर की लकीर। बाबा ने कहा अच्छा। फिर बाबा ने कहा, मम्मा तुम बताओ बाबा ने क्या क्या शिक्षाएं दी। तो मम्मा ने सारा का सारा रिपीट कर दिया। तो बाबा ने मुस्कुराकर दीदी को कहा, दीदी उत्तर मिला, उस दिन का उत्तर मिला, मम्मा क्यों आगे गई उत्तर मिला। तो दीदी ने कहा, हां समझा, कि बाबा भले उन बच्चों को बोल रहे थे लेकिन मम्मा की ये विशेषता, बाबा ने कहा देखो मम्मा के अंदर ये विशेषता कि बाबा जिसके लिए जो कुछ भी कहे, लेकिन मम्मा समझती पहले ये मुझे करना है, भले बाबा उसको बोला लेकिन मम्मा उसके लिए भी ये काम पहले मुझे करना है। मम्मा कभी ये नहीं सोचती बाबा ने उसके लिए कहा। तो दीदी को बाबा ने कहा, देखो तुम्हारे अंदर तो ये विशेषता है कि बाबा जो कहेगा वो हम करेंगे, लेकिन मम्मा के अंदर ये विशेषता है बाबा जिसके लिए भी जो कुछ कहेगा वो मुझे करना। अच्छा फिर आगे बाबा ने कहा, आदि देशवासी, आदि देशवासी माना कहां के वासी, सत्य की दुनिया के वासी। कितने सुंदर शब्द बाबा की, बाबा ने कहा सतयुगी स्वदेश, वो हमारा अपना देश। अभी कौन से देश में है, हाँ पराये देश में है ना, रावण के देश में है ना, तो रावण की कलयुगी दुनिया माना रावण का देश, सतयुगी दुनिया माना हमारा देश जहां हमारा राज्य था। तो बाबा ने कहा अपना राज्य याद आता है, कैसा था आपका राज्य, हाँ? तो बाबा ने याद दिलाया, देखो आपका राज्य कैसा था, सतयुगी दुनिया आपकी कैसी थी, सुख शांति आनंद से भरपूर संपन्न, और एक जन्म नहीं दो जन्म नहीं लेकिन कितने जन्म तक, कितने जन्म तक, 21 जन्म तक, 2500 वर्ष तक, 2500 वर्ष तक हम क्या बन के रहे, देवी देवता। देखो आप सोचिए कितनी बड़ी बात, ये हम रोज सुन सुन करके कॉमन समझ लिया ना, हाँ भाई मनुष्य देवता बनना है। आप बैठ करके सोचो तो सही, ये कितनी ऊंची बात है। अगर आप आपसे कोई पूछे आप रोज सेंटर में जाते हो भागते हुए क्या मिलता है आपको, तो आप क्या कहेंगे, क्या कहेंगे है ना। अगर उसको आप ये कहें मैं मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ने जा रही हूं, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ने जा रहा हूं, तो वो तो आपको नीचे से ऊपर तक देखेगा, ये क्या बोल रहे हैं, तुम देवता बनोगे तुम है ना। मतलब उसके तो वो कल्पना से भी पार, सोचने से भी पार, सोच भी नहीं सकता ये बात। और हम बच्चे है ना, देखो कितनी खुशी की बात है कि बाबा कह रहे बच्चे तुम कल्प कल्प बने थे, कोई नई बात नहीं है, अनेकों बार बन चुके हो, तुम देवी देवता घराने वाली आत्मा हो, शिव भगवान। और ऐसे नहीं कि अगले कल्प में दूसरा कोई आकर के बन जाएगा, हर कल्प हम ही बनते रहेंगे, आपका पार्ट फिक्स है, ठीक है ना। तो बाबा ने कहा देखो ब्रह्मा बाबा के साथ आप आकर के राज्य करते हो, और तो अपना देश याद आता है। फिर बाबा ने कहा कि आप इस जन्म में विदेश सेवा के लिए, कई बार हम सब जब यहाँ विदेशी आते हैं तो उनसे पूछते हैं अच्छा आप कौन से देश से आए हैं, आपका कौन सा देश है, तो कहते नहीं, या हम कहते आप विदेशी हो तो कहते नहीं हमें विदेशी नहीं बोलो। फिर क्या बोले, आप तो विदेश से आए तो विदेशी नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूं, नहीं नहीं हम भारतवासी हैं। अच्छा भारतवासी हो, आए तो विदेश से हो, तो कहते नहीं बाबा ने इस जन्म में हमें वहां भेजा है, अगर हम नहीं रहते तो सेवा कैसे होती। बड़ा सुंदर जवाब देते हैं कि हम नहीं होते तो सेवा कैसे होती, तो बाबा ने सेवा के लिए हमें वहां भेजा है, बाकी तो जन्म जन्म हमारा 2500 वर्ष, तो आज भी बाबा ने कहा 21 जन्म तो गारंटी ही है, बाकी अनेक और अनेक जन्म आप इस देश में रहे हुए हैं। तो बाबा ने कहा अपने देश से तो प्यार होता है ना, भल कैसा गरीब बन गया है धूल लेकिन अपना है ना, अपना देश तो प्यार है ना। तो बाबा ने कहा सोचो है ना, हम किस देश के वासी हैं, हम सतयुगी देश, हाँ वो हमारा देश है जहां पर हर प्रकार का सुख तन मन धन जन है ना, जहां दुख अशांति का नाम नहीं। तो ब्रह्मा बाबा के साथ आए, राज किया, ब्रह्मा बाबा के साथ पूज्य बने तो पुजारी भी बने, पूज्य बनने में भी नंबर वन तो पुजारी में बनने में भी नंबर वन। तो बाबा ने कहा आपका ये अलौकिक संसार, फिर बाबा ने कहा अच्छा भारत तो आपका देश है, और भारत देश के अंदर मधुवन, ये जो बाबा का ये अलौकिक ब्राह्मण संसार है, तो मधुवन अच्छा लगता है, बाबा ने पूछा मधुवन अच्छा लगता है, आपको कहा जाए अब यहीं बैठ जाओ मधुवन निवासी बन जाओ तो खुशी होगी नहीं होगी, होगी अच्छा आप सच, मेरे भी साथ ऐसे हुआ, अचानक मेरे को कहा गया ज्ञान सरोवर बन रहा था, समय भाग रहा हूं लेकिन क्या है जब मुरली डिवीजन करने लगो तो बड़ी छोटी छोटी कहानियां याद आ जाती हैं। जब ज्ञान सरोवर बन रहा था दादी ने यही पूछा कौन है जो ज्ञान सरोवर बन रहा है, ज्ञान सरोवर में रहना चाहते हैं जो महावीर नष्ट मोहा ऐसे स्वतंत्र उड़ता पंछी हनुमान अंगद दादी तो नशा चढ़ाती थी ना, वो हाथ खड़ा करो मधुवन में जो समर्पित होना चाहते हैं। हम लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया। अगर अभी दादी आवे या दीदी आवे और आपसे पूछे अच्छा अभी खुला चांस है जो मधुबन में रहना चाहते हाथ खड़ा करो, तो कितने लोग तैयार हो सारे अच्छा मधुबन में रहने के लिए तैयार हैं? कोई घर ये बाल बच्चे, माताओं को बाल बच्चे तो नहीं याद आएगा, अरे घर में बाल बच्चों का क्या होगा, हाँ भाइयों का नौकरी धंधा क्या होगा, घर कौन चलाएगा, याद तो नहीं आएगा, हाँ रह जाएंगे। अच्छा, तो बाबा ने कहा बाबा को पता है किसको यहां रखना है और किसको वहां रखना है, तो आप जहां ही रहते हो ना वहीं को मधुबन बना लो, ठीक है ना। आपको यहां से आपका घर मधुबन है और वो जो है सेवा स्थान है, तो सेवा भी तो करनी है ना, करनी कि नहीं करनी। बाबा साकार समय की बात है, दादियों से जो हमने सुना, एक बार दादी सुना रही थी कि अब बाबा के साथ हम 14 वर्ष तक रहे, मधुबन से जाने की इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन यज्ञ में बेगरी पार्ट आया, जाना तो था सेवा के उद्देश्य से, बाबा बाहर जाओ बच्चे बाहर सेवा करो, जैसे तुम्हारा कल्याण हुआ, तुम्हारे ही भाई बहने तो हैं, सबको जगाना है ना, जाओ, लेकिन कोई जाने के लिए तैयार नहीं होता था। तो बाबा ने कहा देखो जो यहां पर रहते हैं वो पच्छड़ माल है ना, उस समय छोटी वो बुढ़िया माताएं बुजुर्ग माताएं हैं, वो पच्छड़ माल है, और जो बाहर जाते हैं वो तो बहती गंगा है, वो है ना नदियां हैं, बाबा ने टाइटल देना, वो विश्व कल्याणकारी हैं, तो तुम्हें पच्छड़ माल बन करके रहना या विश्व कल्याणकारी बनना है। तो कहा फिर वो बच्चे धीरे धीरे फिर तैयार होने लगे, और जिनको रखना होता था यहां पर, और ऐसे कोई ऐसे भी होते थे कि वो कहते थे नहीं नहीं मुझे तो सेवा में जाना है, लेकिन बाबा उनको रोकते थे नहीं तुम्हें यहां जरूरत है। तो वो बहन बोलती बाबा आप तो कहते यहां पच्छड़ माल, हमें पच्छड़ माल थोड़ी बनना है, हमें तो बहती गंगा विश्व कल्याणकारी बनना है ना। तो उसको कहते उस बच्ची को बाबा कहते बाबा भी तो यही रहता है, बाबा पच्छड़ माल है क्या, बाबा तो सबसे नंबर वन है, बाबा रहता है यहां मम्मा रहती है। देखो बाबा के पास कितनी सुंदर युक्ति, जिसको रखना होता था बाबा अपना उदाहरण दे देता था। अच्छा बातें बहुत है, और तो क्या करना है, जहां भी आज बाबा ने कहा ना जहां बाबा रखे, ठीक है ना, यहां रहना या जहां बाबा रखे। जहां बाबा रखे, और बाबा को पता है किसको कहां रखने में सेवा समाई हुई है। फिर बाबा ने कहा कभी सेवा का बोझ सिर पर तो नहीं आता है, आता है, ये करना है वो करना है, ये प्रोग्राम करना है, है ना, कॉन्फ्रेंस करनी है, यहां पर रिट्रीट करनी है, ऐसे संकल्प तो नहीं चलता है। जिम्मेवार कौन, बाबा या मैं, बाबा, तो बोझ किसके ऊपर होना चाहिए। बाबा ने कहा मेरे दो ना मुझे बोझ सारा, 63 जन्मों की आदत पड़ी है क्या बोझ उठाने की, हम क्या है ना बिना बोझ उठाए बिना चिंता किए हम रह ही नहीं पाते हैं। बाबा बार बार कहते हैं सारे बोझ मुझे दे दो, बच्चे तुम हल्के रहो लाइट रहो निश्चिंत रहो, लेकिन हमारी आदत क्या है। तो बाबा ने कहा बाबा बैठा है ना, कोई बोझ उठाने की जरूरत नहीं, 63 जन्म से तो बोझ उठाते आए ना, सारे बोझ बाबा को दे दो और आप क्या बन जाओ, लाइट हल्के। तो कब रहेंगे हल्के, क्या सोचेंगे, तो हाँ करण करावन हार बाबा है, हाँ, और मैं क्या हूं, निमित्त मात्र। मैं तो ये कहता हूं, मैं तो प्रैक्टिकल में देखता हूं कि सचमुच बाबा करता भी है, माना कराता भी है तो करता भी है, कराता तो है ही है वो, लेकिन हमारे अंदर तो वो भी शक्ति नहीं रही कि मैं कुछ कर सकूं, करता भी वही है, कराता तो है ही है लेकिन करता भी वही है। करता है कि नहीं करता, देखो जो हम सोच भी नहीं सकते कितने बड़े बड़े प्रोग्राम चल रहे हैं, तो कौन कराता है। अगर हम बाबा के ऊपर सौंप देते हैं तो हल्के रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं, लाइट रहते हैं। अगर मेरा बनाया मैं करता हूं, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, तो ये मेरापन मैंपन आना ये है बोझ, ये थकाता है, तन से भी थकाता है, मन से भी थकाता है। देखो सेवा होगी, अभी यहां पर आप सब कुछ भट्टी भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, हाँ। तो मैं कई बार उदाहरण देता हूं, सेवा है, सेवा तो नाम मात्र का होता है, और आप तो डबल भाग्यशाली की भट्टी भी मिल गया करने के लिए और सेवा भी मिल गया, और वो सेवाधारी तो उनको केवल सेवा ही है, और आपकी दोनों कमाई, योग भी चल रहा है, तपस्या भी, और समय मिलता है, माना एक एक सेकंड आपका सफल हो रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जैसे समझो सेवा पूरी हो गई और सारे लोग चले गए, और आपको कहा गया थोड़ा सा कुछ काम है, इसको थोड़ा सा पूरा कर दो, है ना। सारे लोग सब्जी काटने वाले चले गए और हमें कहा गया मूढ़ा समेट दो या ये काम रख कर दो वो कर दो। कई बार सेंटरों पर भी ऐसा होता है ना कि सारे लोग चले गए और बहन जी आपको बता दे भाई जी थोड़ा सा ये सेवा है कर दीजिए। हमने आंख दिखाया, मैं ही दिखाई पड़ती हूं क्या, सारे लोग चले गए, इनको रोज हम ही मिलते हैं और कोई नहीं मिलता, ऐसे होता है ना संकल्प। अब ऐसे समय पर हम क्या सोच सकते हैं, वाह मेरा भाग्य, देखो बाबा मेरा ही भाग्य बनाना चाहता है, सबको बाबा ने भेज दिया और बाबा ने विशेष हमें ही रखा, हाँ बाबा की हमारे ऊपर खास दृष्टि है, और इनको बहन जी को मेरी ही सेवा पसंद आती, तभी तो मुझे रोका गया, दूसरे को क्यों नहीं कहा गया, जरूर मेरी सेवा पसंद आई होगी तभी मुझे बोला गया। वाह बाबा वाह, दिल से एक है जो पॉजिटिव सोचता है, दिल से बाबा को थैंक्स देता है, आनंदित रहता है और रोज ही उसका भाग्य बनता रहता है, और एक है आंख दिखाया, अच्छा मना तो कर नहीं सकता लेकिन अंदर में मैं ही दिखाई पड़ता हूं और कोई नहीं है, हमें ही रोज कहा जाता है। तो निगेटिव सोच के चाहे परेशान और चाहे पॉजिटिव सोच कर आनंदित। अभी मुझे याद आ रहा कि एक 97 की अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा कि कई बच्चे हैं ना, सारा मना सारा दिन आप सेवा करके आए और सेंटर पर पहुंचे, और आपकी तो अंदर में थी ना भाई सारा दिन सेवा करके आए हैं, बहन जी हमारी खूब महिमा करेंगी, खूब सत्कार करेंगी, लेकिन बहन जी आपके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, कुछ पूछा ही नहीं। फिर बाबा के शब्दों में बता रहा हूं, बाबा ने कहा, फिर वो स्टूडेंट क्या सोचता है, देखा इतनी सेवा करके आया, बहन जी ने एक गिलास पानी तक भी नहीं पूछा, क्या फायदा, जैसे और अपने घर में रहते ऐसे हम भी अपने घर में रहेंगे, क्या सेवा करने का फायदा, जो आगे पीछे घूमते रहते हैं बस उन्हीं की महिमा, हाँ उन्हीं को पूछा जाता है और हम इतनी सेवा करते हैं हमें कोई पूछता ही नहीं। बाबा ने कहा कि तुम्हें किसकी डिक्शनरी में नाम लिखवाना है, बहन जी की डिक्शनरी में या बाबा की डिक्शनरी में, हाँ कौन महिमा करे, बाबा या बहन जी, थोड़ा थोड़ा बहन जी भी तो करना चाहिए थोड़ा थोड़ा बाबा करेंगे तो कौन सुनाई पड़ता है, बहन जी करेंगे तो सब देखेंगे ना कि इतनी आप सेवा करके आया है। तो बाबा ने कहा बाबा देखता है, बाबा की डिक्शनरी में आपका पहला नंबर है, आप क्यों सोचते हो, हाँ। और बाबा ने कहा ये तो वरदानी युग है, आप जो सोचोगे वही हो जाएगा, अगर आप सोचते हो लोग हमारी महिमा करें लोग जाने, हाँ तो वो भी, हाँ बाबा के हाथ से तथास्त, वरदानी हाथ है ना बाबा का, जो आप संकल्प करोगे सब संगत में बाबा सब इच्छाएं पूरी करता है। अगर आप चाहते हो हमारा नाम मान शान हो, लोग हमें जाने, लोग हमारी महिमा करें, वो भी हो जाएगा, लेकिन घाटा किस में, 21 जन्मों की जो प्राप्ति है, 21 जन्मों का जो भाग्य है, उसमें घाटा। तो बाबा ने पूछा आपको क्या चाहिए, 21 जन्मों का भाग्य या अल्पकाल का नाम मान शान। भाई दो चार लोगों ने ही बोला, बाकी लोग का क्या चाहिए, एक है अल्पकाल का नाम मान शान, अभी आपकी खूब महिमा हो जाएगी, लेकिन जो 21 जन्मों का भाग्य है उसमें कट हो जाएगा। तो क्या चाहिए, अल्पकाल का नाम मान शान या 21 जन्मों का भाग्य। और बाबा ने कहा आपने सेवा की, आपका नाम होगा, मान होगा, महिमा होगी, सब कुछ होगा, लेकिन हम इतने उतावले हो जाते हैं ना कि हम अपने मुख से वो गड़बड़ हो जाता है, हम अपने मुख से ना करें, भले दूसरा तो करेगा, आपने सेवा किया है, हर सब कुछ मिलेगा। लेकिन तो बाबा ने आज क्या कहा, कौन सी सेवा थकावट लाती है और सेवा में क्या समझोगे तो सदा हल्के रहोगे, थकावट का अनुभव नहीं होगा। खेल, अभी देखो हम खेल खेलते हैं तो जैसे फुटबॉल खेल है और ऐसे ऐसे खेल है कि उसमें हम कितना दौड़ लगाते हैं, एकदम पसीने से भीग जाते हैं, लेकिन उसमें हम क्या एंजॉय का अनुभव करते हैं, क्यों? क्योंकि हम खेल समझ रहे हैं। ऐसे ही सेवा में कितना भी सेवा हो लेकिन जहां उमंग उत्साह है, जहां नशा है, जहां खुशी है, तो वो सेवा आपको सेवा खेल लगेगा। आप क्या कहेंगे, अरे ये तो बाएं हाथ का खेल है ये तो कुछ नहीं है, और जरा सा भी काम है आपके अंदर मैपन है, चिड़चिड़ापन है, ईर्ष्या है, तो जरा सा काम भी पहाड़ जैसा लगेगा। तो क्या करना है, खेल समझना है। बाबा ने कहा जो ड्यूटी समझते हैं, क्या करें, करना पड़ता है, जाना पड़ता है, तो ड्यूटी नहीं समझना है। हम अपने घर में ड्यूटी समझते हैं क्या, जो भी हमारे सामने आता है हम दिल से प्यार से करते हैं ना, और जो बच्चे दिल से सेवा करते हैं सचमुच, भविष्य की तो बात छोड़ो, वर्तमान में ही बाबा जैसे कि उनके ऊपर मेहरबान रहता है। आपको पता होगा हमारे यहाँ पर पांडव भवन में एक भाई, बाबू भाई, वो अनाज का ट्रक चलाते हैं। अच्छा, कोल्हापुर के ही है अच्छी बात है, तब तो आप जानते ही है तो तब तो उनकी कहानी आप जानते होंगे। मैं देखा वंडरफुल सीन, वो बाबा के बहुत मेहनती, बहुत आज्ञाकारी और दिल से सेवा करने वाले भाई। आप देखिए जो दिल से सेवा करता है बाबा क्या रिस्पॉन्स देता है। वो अनाज का ट्रक लेकर के रात के समय ऊपर, नीचे से ऊपर आ रहे थे, और क्या हुआ, आधे रास्ते में उनको, सारा दिन बेचारे सारा दिन भी बिजी रहे होंगे, गाड़ी चलाते चलाते नींद आ गई, और नींद कहां आई, जब बिल्कुल ऊपर पहुंच गए, जहां से नीचे देखो तो हजारों फुट नीचे का सीन दिखाई न पड़े हनुमान मंदिर तक, और वहां आने के बाद उनको पता नहीं कैसे नींद आ गई, और वो ट्रक लेकर के हजारों फुट नीचे। अभी आप सोचिए रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है तो कितना नुकसान हो जाता है और मुश्किल हो जाता है बचना उसका, और जो हजारों फुट नीचे चला गया हो फिर उसकी क्या हालत। अब रात का समय, जहां वो गिरे जा करके वहां शेर भालू चीते सब घूम रहे हैं, सबकी आवाज आ रही है, और सामने भी दिखाई नहीं पड़ सकता कि एक फुट दूरी पर दिखाई नहीं पड़ सकता कौन है, लेकिन देखिए कहते ना, जिसको राखे साइयां मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके चाहे जग बैरी होए। अब इतने नीचे गिरने के बाद उनको ऐसा लगा जैसे बाबा ने अपनी गोद में रोक लिया हो, बाबा की इसे गोद में बाबा ने ले लिया हो। हाँ, तो उन्होंने सोचा कि मैं तो बच गया, अब उनके साथ में एक सेवाधारी भाई था, उन्होंने सोचा कि मैं तो बच गया लेकिन मेरा सेवाधारी भाई, उसका पता नहीं क्या, हम कहां गिरे वो कहां गिरा। हाँ, तो वो आवाज करते हैं सेवाधारी भाई को कि भाई जिंदे हो, तो उधर से आवाज आई, हाँ जिंदा हूं देखो एक जो बाबा के अथक सेवाधारी सर्विसेबल रतन है, वो अपना अपने आप को तो बचाते हैं लेकिन उनके साथ में जो रहते हैं वो भी बचते हैं। तो उधर से आवाज आई जिंदा हूं, तो वो बाबू भाई उस भाई को लेकर के आकर के ऊपर तक पहुंचते हैं, फिर दूसरी कोई गाड़ी से आए। अभी देखिए ये क्या था, ये था सेवा का बल, और सेवा से जो दुआएं सबकी मिलती है, हाँ, और दुआ तो छोड़ो, जो भगवान की दुआएं, बाबा ने कहा मैं ये तो पढ़ाई है, मैं आशीर्वाद नहीं देता हूं, मैं वरदान, लेकिन ऐसे बच्चे भगवान के आशीर्वाद, आशीर्वाद दिया नहीं जाता, वो ऑटोमेटिक लिया जाता है, ऐसे बच्चे बाप दादा के आशीर्वाद के दुआओं के अधिकारी बन जाते हैं, ठीक है ना। तो आज भी बाबा ने कहा कि बाबा क्या देखते हैं कि बच्चे सारे दिन बिजी रहते हैं, तो बाबा क्या सोचते हैं कि इनके सिर की मालिश किया जाए, है ना बाबा। देखो भगवान आपके सिर की मालिश, लेकिन किस, ये नहीं कि ये वाला नहीं, लौकिक तरीके से नहीं, अलौकिक तरीके से आप बाबा की याद में स्थित होंगे और बाबा आपके मन को बिल्कुल, आप देख, आप खुद ही अनुभव होगा, आपने खूब सेवा किया है और सेवा करने के बाद कितनी खुशी मिलती है ना, और खुशी मिलता है तो कोई थकावट लगता है क्या। लेकिन सेवा में कभी हमें ये अभिमान ना आए कि मैंने किया, जहां मैं पनाया मैंने किया, मेरे बिना कोई नहीं कर सकता, मैं ही सब कुछ जानता हूं। तो बाबा ने कहा सेवा का कच्चा फल खा लिया। एक मुरली में बाबा ने कहा कि सेवा में पूरा मार्क्स लेना है तो तीन बातें याद रखो, निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी। कभी भी अभिमान ना आए, मैंपन का अभिमान ना आए, और मैंपन का अभिमान आया, मैं जैसा कहूं वैसा हो, मैं ही सब कुछ जानता हूं, मैं ही करता हूं, मेरे बिना कोई कुछ नहीं कर सकता, मैंने इतना किया, मैंने इतना दिया। तो बाबा ने कहा अव्यक्त मुरलिम बाबा की महावाक, चाहे रात दिन सेवा कर लो, कितना भाग दौड़ करके सेवा कर लो, भूख प्यास सहन करके सेवा कर लो, बाबा ने उसमें कहा था कि 95% कट, 5% जमा होगा। और अगर आपने, बाबा ने कराया, करण कराओन हर बाबा है, वही करा भी रहा है, वही कर भी रहा है, मैं तो उसके हाथ की कठपुतली हूं। आज भी बाबा ने कहा ना अपने आप को, वो जैसे नचा रहा है, जैसे करा रहा है, वैसे हम कर रहे हैं। और अगर आपने बाबा कराया, बाबा बाबा कहते रहे, तो सेवा में 100% मार्क्स मिल गया। और 100% मार्क्स मिला तो उसकी निशानी आपको खुशी होगी, आत्मसंतुष्टता होगा, ये प्रत्यक्ष फल। अच्छा आगे चलो, फिर आगे बाबा ने क्या कहा, अब याद के ऊपर बाबा ने कहा कि सारे दिन में हर घंटे में एक या दो मिनट शक्तिशाली याद के लिए समय निकालो तो सारी थकावट दूर हो जाएगी। उदाहरण बाबा ने क्या दिया, जैसे डॉक्टर्स लोग, है ना, कोई कमजोर होता है, कोई शारीरिक बीमारी होती है या कमजोरी है, तो डॉक्टर कहते हैं हाँ भाई ये दवाई लो और हर दो दो घंटे में लेते रहना, तो हम लेते हैं या छोड़ देते हैं, हाँ एक्सरसाइज भी, तो हम दो दो घंटे बाद लेते हैं ना वो दवाई। अच्छा ऐसे ही बाबा ने कहा हर घंटे में एक मिनट। तो एक चीज जो बाबा ने बताया कि अगर आप तीन बातें करोगे तो आपका मन सदा शक्तिशाली रहेगा, और मन शक्तिशाली रहेगा तो उसका प्रभाव शरीर के ऊपर पड़ेगा, शरीर भी आपका, आत्मा तो आपकी शक्तिशाली रहेगी ही, लेकिन शरीर भी शक्तिशाली रहेगा। तो बाबा ने उसकी विधि बताई, सारे दिन में एक तो 8 बार 5 स्वरूपों का अभ्यास, दूसरा देखो जो स्थूल में हम करते हैं वही हमें लौकिक को अलौकिक, हम देखो आजकल डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं, भाई एक्सरसाइज करो, और दूसरा खान पान पर ध्यान दो, विटामिन वाली चीजें खाओ। तीसरा, समय पर आराम करो। बाबा भी यही कहते हैं, सारे दिन में, क्योंकि ये हमारी बीमारी जो है कितने जन्मों की है, 63 जन्मों की। वो डॉक्टर तो बोलता है सुबह शाम कर लो, लेकिन ये डॉक्टर बोलता है सुबह शाम से काम नहीं चलेगा, 8 बार करना पड़ेगा, क्योंकि 63 जन्मों की बीमारी है ना। तो और हमें शरीर कैसा मिलेगा, लक्ष्मी नारायण जैसा शरीर, कंचन काया, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो सारे दिन में 8 बार एक्सरसाइज। आज शाम को योग की ड्रिल उसी पर कराएंगे ना, 5 स्वरूपों के ऊपर, तो वो शाम को बता देंगे, वैसे आप सबको मालूम होगा 5 स्वरूपों की एक्सरसाइज। फिर भोजन, तो भोजन कौन सा, ज्ञान रत्नों का भोजन, रोज मुरली का ना। तो ऐसे नहीं कि हम एक बार, तो 3 टाइम बाबा की जो हम मुरली सुनते हैं उसका हम चिंतन मंथन करें, उसको रिवाइज करें, सुबह दोपहर शाम, ये 3 टाइम हम ज्ञान रत्नों की गोली लें, ठीक है। 8 बार 5 स्वरूपों की एक्सरसाइज करें, और विशेष इंजेक्शन भी 2 बार, एक सुबह एक शाम को। तो 2 बार एक इंजेक्शन माना योग का, तो सुबह एक बार अमृत वेला योग, और शाम को, शाम वाला 6:30 से 7:30। अगर ये 2 बार हम इंजेक्शन लेते हैं और ये 3 बार ज्ञान रूपी गोली लेते हैं, 8 बार एक्सरसाइज करते हैं, तो आपकी निरोगी काया, आत्मा भी कंचन, शरीर भी कंचन, ठीक है ना। स्वस्थ रहना चाहते हैं ना, तो बाबा ने बहुत सुंदर विधि बताई है। और ऐसे कई बार कहते हैं हम तो भूल जाते हैं सारा दिन, कि रात में सोने जाते हैं तो याद आता है। तो हम, वैसे बाबा ने कहा है अगर आपको याद नहीं रहा, भूल गए, तो रात में सोने के पहले 8 बार ये 5 स्वरूपों का अभ्यास करके फिर सोना है। किसी कारणवश भूल गए हो तो, और अगर हम सारे दिन में समय निर्धारित कर लेते हैं तो भूलेंगे ही नहीं। जैसे अमृत वेला उठने के बाद, योग के पहले, योग के बाद, भोजन के समय ना, रेस्ट के पहले और बाद में, शाम को योग के पहले बाद में, मुरली क्लास के पहले और बाद में, कोई भी कार्य करते, अगर हम समय निर्धारित करेंगे तो 8 बार से भी ज्यादा हो जाएगा। तो हमें खुद प्लान बनाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, और बाबा ने कहा शक्तिशाली याद क्यों नहीं रहती, लिंक टूटता है, लिंक टूट जाता है। क्यों लिंक टूटता है, हमारा लिंक टूटता है। देखो हम बाबा की याद में बैठे, बाबा की याद में बैठे, और हमारा किसी से, प्रैक्टिकल बात पे आ जाओ, अगर आपका किसी से मन मुटाव है, ईर्ष्या देश घृणा नफरत है, और आप बैठे बाबा को याद करने, तो बाबा याद आएगा या वो याद आएगा, वो कहेगा ना मेरे से मन मुटाव रख करके और आप चले वो भगवान को याद करने, पहले मेरे से तो निपट लो। तो ये, इसलिए योगी आत्मा को क्या कहते हैं, योगी आत्मा अर्थात ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। ज्यादा हमारी किसी से दोस्ती होगी तो वो भी याद आएगा, किसी से वैर विरोध होगा तो वो भी याद आएगा। तो सबसे क्या रखना है, समान भाव, है ना। तो लिंक टूटे नहीं, इसके लिए हम देखें कि किसी भी आत्मा से हमारा कोई नफरत, कोई घृणा, कोई ईर्ष्या की भावना नहीं है, लिंक सदा जुटा रहे। जो आज बाबा ने कहा बीच बीच में अशरीरी बनने का अभ्यास, वो करते रहें, और भगवान हमारा साथी है। आप सभी में से जो पुराने होंगे उन्होंने देखा होगा विश्व रतन दादा को, तो वो जब अपना अनुभव सुनाते थे तो वो अनुभव सुनाते हुए एक इतनी अच्छी बात सुनाते थे कि सामने वाले को फीलिंग हो जाता था उस बात की। वो कहते मैं सदैव ये सोचता हूं कि बाबा हमारे बाजू में बैठा है और हमें देख रहा है। अभी ये आप भी कर सकते हैं, बाबा हमारे बाजू में बैठा है और हर पल मुझे देख रहा है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। ये सोचेंगे तो हम फालतू बैठ करके टाइम वेस्ट कर सकते हैं क्या, व्यर्थ गंवा सकते हैं? बाबा हमारे बाजू में बैठा मुझे देख रहा है। तो हम खुद प्लान बनाएं, हम खुद के टीचर खुद बने। जैसे अब सारा दिन लिंक बनी रहे तो हम छोटी छोटी बातें, जैसे हम चल रहे हैं तो हम ये नियम बना लेंगे, जब हम चलेंगे तो फरिश्ता बन करके चलेंगे, लाइट के शरीर में चलेंगे, प्योर वाइब्रेशंस फैलाते हुए ही चलेंगे। एक नियम ये चलते हुए, क्या हम कहीं चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, यही तो होता है ना। चलने के समय आप ये बना लो कि चलेंगे तो लाइट के शरीर में चलेंगे, फरिश्ता के शरीर में चलेंगे और प्योर वाइब्रेशंस फैलाते हुए चलेंगे। और बैठेंगे तो आप भले कुर्सी पर बैठे हैं, सोफा पर बैठे हैं, बेड पर बैठे हैं, शरीर कहीं भी बैठे, लेकिन मैं कहां बैठूंगा? मैं भ्रकुटी रूपी सिंहासन पर ही बैठूंगा और कहीं नहीं बैठ सकता, है ना। मैं बाबा के दिल रूपी तट पर बैठूंगा, मैं बाबा की गोदी में बैठूंगा। मैं बाबा ने इतने सुंदर सुंदर स्थान दिए हैं कि मेरे गोदी में बैठ जाओ, मेरे दिल रूपी सिंहासन पर बैठ जाओ, अकाल तख्त पर बैठ। जितना समय हम बैठे रहेंगे भ्रकुटी रूपी सिंहासन पर हम विराजमान रहेंगे उस स्मृति में। अच्छा, और हम किसी को देखते हैं, देखते हैं तो क्या देखेंगे? उसके आदि अनादि स्वरूप को देखेंगे। बाबा ने एक बार कहा है कि जब तुम सामने वाले को देखते समय ये देखते हो, ये बहुत है ना, आदि अनादि स्वरूप को देखना माना गुण विशेषता, उसके गुण को देखना। ये बहुत शांत स्वरूप आत्मा है, ये बहुत प्रेम स्वरूप आत्मा है, ये बहुत सुख स्वरूप आत्मा है। देखो, एक से आपका विरोधी है, आपका दुश्मन है, लेकिन आपने अनादि स्वरूप में देखा ये बहुत शांत स्वरूप आत्मा है, वो क्रोध कर रहा है, लेकिन आप देख रहे हैं ये बहुत प्रेम स्वरूप आत्मा है, ये बहुत शांत स्वरूप आत्मा है, तो उसके क्रोध को भी खत्म करने के आप निमित्त बन जाएंगे, आपसे वो मित्रता कर लेगा, उसकी भावना चेंज हो जाएगी आपसे, आपके प्रति। हम अपने भावना के द्वारा है ना, श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा दुश्मन को मित्र और मित्र को दुश्मन बना सकते हैं। तो अनादि आदि स्वरूप में देखेंगे तो कभी, और अगर ऐसे नहीं देखते, अच्छा इसको तो मैं बहुत ज्ञानी योगी समझता था, ये भी गुस्सा करता है क्या, ये भी तेज तेज बोलता है क्या, वो भावना, और आदि अनादि स्वरूप में देखे, नहीं ये तो गुस्सा कर ही नहीं सकता, ये तो माया परीक्षा ले रही है हमारी, ये तो बहुत प्रेम स्वरूप आत्मा है। तो इस प्रकार से, और दूसरा अभ्यास बाबा कहते हैं ना, सकाश दो सकाश दो, तो एक बहुत सुंदर प्रैक्टिकल अभ्यास, आपके सामने आए कोई भी आए, आप ये नियम बनाओ कि हमारी दृष्टि से कोई खाली, एक आया सामने, मेरी दृष्टि से पवित्रता के वाइब्रेशन जा रही इस आत्मा के ऊपर, दूसरा आया मेरी दृष्टि से शक्तियों के वाइब्रेशन जा रहे हैं, तीसरा आया मेरी दृष्टि से शांति के वाइब्रेशन। आप ये नियम बना लो कि जिसके ऊपर भी मेरी दृष्टि पड़ेगी, मेरी दृष्टि से कोई ना कोई वाइब्रेशन ही, अपनी दृष्टि से कोई ना कोई वाइब्रेशन देना है, कोई ना कोई गुण। तो सारा दिन और कोई नहीं है तो आप बाबा से लेते रहो, सामने आया तो आप दो, बाबा से शांति सुख पवित्रता की किरणें आ रही है, कोई आया तो वो दो, तो सारा दिन आपका ये मनसा सकाश का अभ्यास हो जाएगा। तो इस प्रकार चलना उठना बैठना है ना, ये नियम बनाना चाहिए। जैसे हम ड्रेस पहनते हैं, ये मैंने बता रहा हूं कि ये लिंक आपका जुटा रहे, कैसे बाबा की याद बनी रहे। आप ड्रेस तो हर एक के पास 6-7 ड्रेस तो होता ही है जो हम पहनते हैं, हाँ एक ड्रेस, आप हर ड्रेस का नाम लिख लो, ये मेरा फरिश्ता, ये ड्रेस पहनूंगा तो सारा दिन मैं फरिश्ता बन करके रहूंगा। दूसरे ड्रेस का नाम लिख लो, ये मेरा देवताई ड्रेस है, ये पहनूंगा तो सारा दिन मैं देव स्वरूप में रहूंगा। अब देखो ये सब विधियां हैं। तीसरा अपना पूज्य स्वरूप का, ऐसे अलग अलग स्वमान, हाँ स्वमान के ड्रेस, ये स्थूल कपड़े भी हमें बाबा की याद दिलाए, ये कपड़ा पहना माना हम सुदर्शन चक्रधारी बन करके रहें, ये पहना विश्व कल्याणकारी बन करके रहें। अच्छा, तो इस प्रकार से अलग अलग ड्रेस से भी, और सारे दिन में हम चलते फिरते उठते बैठते जैसे कि बाबा से कंबाइंड रहें, ज्ञान सूर्य बाबा जैसे हमारे सिर के ऊपर छत्र छाया बन गया, उसकी निरंतर सकास हमारे ऊपर पड़ रही है, इस फीलिंग में रहें, तो हम खुद प्लान बनाएं, खुद के टीचर बन खुद बने, और ऐसे छोटे छोटे टिप्स हम याद रखेंगे तो हमारा लिंक सदा जुटा रहेगा। और हमें खुद नोट करना कि कौन सी बातें हैं जो हमारे, अब ये आपके लिए होमवर्क है, लिखना इसके ऊपर, कौन सी बातें हैं जो हमारे लिंक को तोड़ देते हैं और कौन सी बातें हैं जो हमारे लिंक को जोड़ देते हैं। ओम शांति।